एक वाक्य सुने, ये इनका बड़ा अच्छा लिखा हुआ वाक्य, मैंने पहले भी कहीं पढ़ा था। और ये सिर्फ किसी मुल्क के साथ नहीं होगा बल्कि आपकी जिंदगी में भी होगा। और वो क्या, निफाजे शरीयत और तेल की दौलत। यानी थोड़ा समझ ले, जितना शरीयत को आप नाफिज करेंगी ना अपनी जात पे, अपने घर पे, अपनी खुशी गम में, अपनी जिंदगी में, उतना ही तेल निकलेगा। तेल से मुराद बरकतें। किसी मुल्क में अगर शरीयत नाफिज हो जाएगी तो वहां जमीन तेल दे देगी। आपकी जिंदगी में शरीयत नाफिज हो गई, वल्लाह ही आपकी जिंदगी खुशियों से भरेगी। कुरान कहता है कि अगर बस्तियों वाले, वलौ काना अहलुल कुरा आमनू वत्तकू, अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते, अल्लाह ताला कहते हैं हम उन पर बरकतों के दरवाजे खोल देते। लफतहना अलैहिम अबवाब अर-रिज़्क, और बरकतों की बातें आती हैं, अल्लाह ताला कैसे खोलते हैं। ये अपना एक वाक्य लिखते हैं कि 1980 की बात है, मैं सऊदी अरब में था। एक छोटे से बच्चे ने मुझे सलाम करके कहा कि शेख तुम्हारे मुल्क में भी अब तेल निकल आएगा। आपको पता ना सऊदी अरब में तो तेल था ना, तो कहा पाकिस्तान में भी निकल आएगा। मैंने कहा क्यों? इसने कहा कि रात हमने टेलीविजन पर आपके जियाउल हक का बयान सुना। क्या कि वो पाकिस्तान में शरीयत नाफिज करने की बात कर रहे थे। बच्चा कहने लगा शरीयत नाफिज होगी तो तेल क्यों नहीं निकलेगा। आप इस बच्चे की तरबियत पर गौर करें। कहने लगा शरीयत नाफिज होने की देर है, तेल निकल आएगा। मेरे बाबा कहते हैं कई कई दिन तक हमें खाना नहीं मिलता था, हम भूखे रहते थे, लेकिन मलक अब्दुल अजीज, अल्लाह उन पे अपना रहम करे, उन्होंने जो ही शरीयत नाफिज की, हमारे मुल्क में जगह जगह से तेल निकल आया। तो देखें इसने शरीयत और तेल का रिश्ता कायम किया हुआ है। बात सच है। आपको पता है सऊदी अरब कुछ भी नहीं था। अगर आप जाइए जरा तुर्कों का दौर, जब तुर्कों का कब्जा था, हुक्मरानी थी, उससे पीछे ले जाएं, सऊदी अरब में कुछ भी नहीं था, बंजर वीरान। जब वहां इस्लामी शरीयत नाफिज हुई तब देखें वो तेल संभलता नहीं उनसे। वो कहते हैं हम तो निकाल ही नहीं पा रहे पूरा, खोलें तो पता नहीं पूरी दुनिया को मुफ्त तेल वो ऐसे ही बांटते हैं जैसे जमजम बांटते हैं। और वल्ला ही वो बांट सकते हैं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी डूब जाएगी। याद आपके मुल्क के साथ क्या हो रहा है। आपको पता है ये जो क्रोन की फ्लक्चुएशन है ये किस वजह से। मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि शायद आप में से कुछ भोली भाली औरतों को ना ही पता हो। इतना तो पता है ना कि पहले पाकिस्तान जाके एक क्रोन के 18 रुपये मिलते थे, 18, अब 12 मिलते हैं। अब देखिए 1/3 रह गया, 2/3 रह गया, कह लें 3 हिस्से करें तो एक हिस्सा खत्म। किधर गया? ये सिर्फ सऊदी अरब के एक हुक्म, उसने अपना तेल सस्ता किया। नॉर्वे के खर्चे इतने हैं कि ये तेल सस्ता कर ही नहीं सकते। और ये दो कॉम्पिटिटर थे, नॉर्वे में भी तेल बहुत है। मैं कहती हूँ यहाँ शरीयत नाफिज हो जाए तो जरा देखिए जो बहारें होंगी। अब वो सऊदी अरब ने अब सस्ता किया, सारी दुनिया ने उधर से लेना शुरू कर दिया, नॉर्वे की कौन करे। वजह यह कि इनका क्रोन जो है वो नीचे से नीचे जा रहा है। और अगर यही हालात रहे तो आप देखिए कि आने वाले दिनों में क्या होगा। देखिए ना 2/3 रह गया तो आधा भी रह जाए, कल 5-6 रुपये का भी क्रोन हो सकता है। पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल है। और ये लोग इस वजह से परेशान है। तो बेनियाजी जो होती है ना, अब अगर सऊदी अरब ले रहा होता किसी से पैसे, इनसे कोई शर्तें होती, कोई इनके एग्रीमेंट्स होते, तो सऊदी अरब जो मर्जी करे वो तेल सस्ता नहीं कर सकता। और उधर सस्ता कराने में पीछे बड़ी ताकतें हैं। यदि आप देखें इस वक्त पूरी दुनिया गेम खेल रही है, लेकिन पीछे अल्लाह का फैसला है। ये तेल की बात इन्होंने लिखी है कि पाकिस्तान में शरीयत नाफिज हुई तो तेल है। आप हैरान होंगे, जिस तरह सऊदी अरब में तेल है ना, पाकिस्तान में सोना है। पाकिस्तान की जमीनें सोने से भरी पड़ी हैं। ये जो नमक निकलता है आपके मुल्क में खेड़ा की कानों से, कभी इत्तफाक हो जाके देखे आपकी आंखें खुल जाएंगी। जमीन की तह में अल्लाह ने इतना हुसन रखा हुआ, इतने रंगों का नमक तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। चमकती हुई नमक की सिले है अल्लाह ने छुपाया हुआ। आज आप में से कोई मर्द मोमिन मुल्क का हुक्मरान बने, और वो कब बनेगा? जब उम्मत मोमिन बनेगी। आपके पाकिस्तान से वो कुछ निकलना है कि सऊदी अरब तो बहुत पीछे रह जाएगा। सऊदी अरब तो एक बंजर मुल्क है, पाकिस्तान में तो पानी भी है और दरिया भी हैं, और वहां तो जमीनें भी सोना उगलती हैं। या आज हमने रोका हुआ तेल का रास्ता, सोने का रास्ता, डायमंड्स है हमारे मुल्क में। एक मेरे पास ईमेल है, कहीं रखी होगी, उन्होंने पाकिस्तान की 10 चीजें शायद ईमेल में भेजी हुई थी। क्या आपको होता है कि पाकिस्तान में क्या कुछ है, दुनिया का किस नंबर पे क्या, किस पे क्या? तो खुशकिस्मत हैं हम, लेकिन बदनसीबी है करतूतों की वजह से उन नेमतों को रोका हुआ है। हदीस में आता है गुनाहों की वजह से नेमतों से फायदा लेने से महरूम हो जाता है। मैं अक्सर सोचती हूँ एक अच्छी चीज है किसी की, फायदा क्यों नहीं ले पा रहा? पकड़ अल्लाह की। पैसा है आपके काम क्यों नहीं आ रहा वक्त पे? आप अल्लाह की पकड़ में। औलाद है, औलाद आपकी खुशी का जरिया क्यों नहीं बन रही? आप अल्लाह की पकड़ में। तो आज अगर हम अपने मुल्क में इस्लाम को नाफिज करने में मददगार हो, मेरा आपका इसमें क्या हिस्सा है? नारे, धरने, हड़ताले, नाच गाना? नहीं, यही काम अवेयरनेस, ईमान और तकवा को रेज करें, इल्म का पानी आम कर दे, पूरे मुल्क में इल्म को आम करना शुरू कर दे। आप देखिएगा, दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और ऐसा होगा, अल्लाह ने चाहा तो होगा, बस हमें जागने की जरूरत है। हमने अभी तक शरीयत को नाफिज होने से रोका हुआ है। मैं आज भी ऐलान करता हूं कि आप ठीक तरीके से शरीयत नाफिज करें तो दुनिया की दौलतें और नेमतें आपको इस तरह से पहुंचेंगी कि आप पूरी दुनिया में बांटने वाले बन जाएंगे। इस मुल्क में शरीयत भी नाफिज होगी, इस मुल्क में तेल भी आएगा, और 10 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप दुनिया के अमीर तरीन कौमों में शुमार होने लगेंगे। लेकिन इस काम के लिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी, ऊपर से नीचे तक आओ कुरान की तरफ की एक मुहिम चलानी पड़ेगी। देखिए, आज से 15-20 साल पहले की बात है जो लिखी हुई है इन्होंने, आज वही लफ्ज आपने मेरे मुंह से सुन लिए। जो साहिब दर्द थे ना, उन्होंने हर दौर में यही कहा कि मुल्क की जरूरत कुरान है, आप लोगों को कुरान पढ़ने पे लगाएं, बाकी काम अल्लाह पे छोड़ दें। इसलिए कि शरीयत हुकूमत के सिर्फ ऐवानों या अदालतों ही में नाफिज नहीं होती, वो हर फर्द के दिल में नाफिज होती है, और इसके लिए अफराद को अपनी अपनी जगह पर मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी हुकूमतें गाफिल हैं, अल्लाह इनकी गफलत दूर फरमाए। असल मुसीबत यह है कि हम सब भी गाफिल हैं। इस्लाम को लाने और शरीयत को नाफिज करने के लिए, दीन की इकामत के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये असल सवाल है, खुद से पूछे। रोटी खाना तो बनाती हूँ, शौहर कमाई तो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी भली, दीन की इकामत यानी दीन को कायम करने के लिए मेरा क्या इनपुट है? आज अपने हस्बैंड से पूछिएगा ये सवाल, आप दीन को कायम करने के लिए क्या कर रहे हैं? पहले तो मुझे उम्मीद है उनको समझ ही नहीं आएगा आपका सवाल, कहेंगे ये कोई नई चीज आ गई है, नमाजें तो हमने सुनी थी, रोजे तो सुने थे, ये दीन को कायम करना क्या है? जहां जहां तक हमारा हाथ पहुंचता है, आवाज पहुंचती है और असर रसूख है, हमने तो वहां तक भी काम नहीं किया। सच बात है, हम वो भी नहीं कर रहे जो कर सकते थे, तो हमसे क्यों नहीं पूछा जाएगा? हमने शोर मचा दिया कि पूरे पाकिस्तान में शरीयत नाफिज नहीं है, और आपका ये मकान 10 मरले का जो आपके नाम रजिस्टर्ड है, यह आपकी एक ममलिकत है। इस ममलिकत में रियाया रहती है, आपकी बीवी, बच्चे, नौकर आपकी रियाया है। क्या आपने यहां शरीयत नाफिज कर दी? यहां कुरान पढ़ाया जा रहा है, इसमें आपने इस्लामी निजाम तालीम नाफिज कर दिया, यहां पर नमाज कायम है, इस घर के सारे अफराद फर्ज रोजे रख रहे हैं। भाई, ये छोटे छोटे पाकिस्तान जब बनेंगे तो बड़ा पाकिस्तान नमूदार हो जाएगा। लेकिन हमसे हर एक की जिम्मेदारी है कि हम अपनी अपनी जगह पर अपने 5-10 मरले के घर में एक छोटा सा पाकिस्तान बनाएं। नहीं बनाया तो पूछा जाएगा और पिटाई होगी, और हम में से हर एक की ये जिम्मेदारी है। वल्लाह ही आज पिटाई हो रही है, ये जो घाट टूट रहे हैं ना, ये जो घरों का सुकून बर्बाद है, वो इस बात पर। और याद रखिए कि इस्लाम को नाफिज करना है, इसके लिए इल्म और जिहाद बिल कलम। हमने जाती इस्लाह की तो बड़ी कोशिशें कर ली, चिल्ले भी काटे, वजीफे भी पढ़े, तहज्जुदें भी पढ़ी, लेकिन इब्लाग किधर है? हम समझते हैं कि दीन सिर्फ नमाज रोजे का नाम है। फरमाए जानिया तो वजानी फजली तो कुल्ला वाहिद मिनहुमा मियां तजल्दा वला ताखुज़कुम बिहिमा राफ़तुम फी दीनिल्लाह इन कुंतुम तूमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सूरत नूर के बिल्कुल शुरू की आयतें कि जानी मर्द हो या औरत, इसको 100-100 कोड़े मारो, तुम्हें नरमी ना घेरे दोनों के लिए अल्लाह के दीन के मामले में। ये दीन का लफ्ज किस लिए यहां इस्तेमाल हुआ? देखिए इस पूरी आयत में कई नमाज का जिक्र है, रोजे का, हज का, तो फिर दीन क्या है? इन सजाओं को नाफिज करना। ये दीन का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल हुआ? 100 कोड़े मारने के लिए इस्तेमाल हुआ। दीन के लफ्ज से क्या मुराद है? इस मामले में तुम्हें कोई नरमी नान घेरे, 100 कोड़े मारने थे, इसने कहा छोड़ो, क्या मारने हैं, नरमी कर लो। नहीं, दीन का लफ्ज अल्लाह की हद नाफिज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सूरत मायदा को जरा गौर से पढ़ें, इसका एक पूरे का पूरा रकू इकामत दीन पे, बल्कि मैं कहूंगी पूरी सूरत मायदा ही शरीयत को वाजे करती है। तो मुझे लगता है कि बात आपको समझ आ गई है, अब आप कुछ कहना चाहें तो कहिए। ख्वाब देख सकते हैं यहां पर मैं ऐसी दुनिया का, इस ख्वाब के हकीकत बनने में क्या रुकावट है भला? मेरा घर। आज से अपने घर को अपनी ममलिकत बनाएं, प्यार से, मोहब्बत से, नरमी से, कभी गुस्से से भी, कभी बेनियाज होकर भी दीन को कायम करें। मुझे पता है कि हमारे घर वाले, हमारे अपने हमसे बहुत प्यार करते हैं। आप देखेंगे कि वो आपकी जुबान से ऐसी बातें सुनकर ज्यादा दिन अपनी गलत चीजों पर नहीं जमेंगे। आज नियत करें, मैंने कोई गलत चीज नहीं मानी। मेरे लिए इस पूरी सीरीज में मैंने आपको 8-10 दफा ये रिक्वेस्ट की है कि नियत करें आज के बाद मैंने किसी अपने की, प्यारे की, बेगाने की, भाई की, बहन की, शौहर के दोस्तों की, ससुराल की, गलत रस्म, गलत तरीके में शामिल नहीं होना। ये तो कर सकते हैं आपके, नहीं आप ये करें, आपका जिहाद ये है। आप घर बैठ जाएं अपने बच्चों को लेकर, आप नहीं जाएंगे ऐसी जगह पे, जाएं अकेले मजे करें। आप देखिएगा जो काम 5 साल में होना था ना, वो 2 साल में हो जाएगा। ये मैं और आप जो नापसंदीदगी के बावजूद गलत चीजों में साथ देने चल पड़ते हैं ना, ये हम उनको और मजे में रखते हैं। आप मुझे वो जुमले समझ आते हैं जो शुरू से सीरत में पढ़े, बल्कि रही को मखतूम में भी ये बात मौजूद है कि हजरत उमर फारूक कहते थे कि आप हमारे रिश्तेदार हमारे हवाले करें। गज़वे बदर के जब कैदी आए तो पूछा उमर क्या किया जाए इनके साथ, पहले अबू बकर से मशवरा ले चुके थे अल्लाह के नबी, तो अबू बकर ने मसलहत और नरमी तबा और हालात की नफ्स पे नजर रखते हुए कहा कि इनको आजाद करके इनका फिदिया ले लें और पैसे इस्लाम को चाहेंगे, क्योंकि इस्लाम को पैसों की जरूरत है। तो उमर क्या कहते थे अल्लाह के नबी, मेरी राय यह कि हमारे रिश्तेदार जो कैदी बन के आए हैं ना, वो हमारे हवाले करें, मेरे मेरे, आपके आपके, और हम अपने रिश्तेदारों को अपने हाथ से मारते हैं। अब मुझे कुछ कुछ समझ आने लग गई है, चीजें पहले नहीं आती थी। मैं सोचती थी ये जज्बाती डायलॉग है, कभी गलबा चढ़ा होगा, लेकिन मैं महसूस करती हूँ कि अगर आपको वाकई अल्लाह और उसके दीन से प्यार हो ना, तो एक स्टेज आ जाती है कि कोई बुलाए तो मैंने नहीं जाना। ये फीलिंग बंदे के दिल में होती है कि मैं कुछ करूं, मैं अल्लाह के लिए करके तो दिखाऊं, बदतमीजी नहीं। और वो तो जंग में आए हुए थे मुसलमानों को मारने, इसलिए मारना है। हमें ये नहीं कहा जा रहा हम अपने रिश्तेदारों को मारने लग जाए, हम खुद अभी किस पानी में, और किसी आम इंसान को तो इजाजत ही नहीं है। वो तो नबी था, हुक्मरान थे, उनके सामने सहाबा थे, वो तो मारने आए थे मुसलमानों को, उनको तो मारना ही था। इसका ये नहीं मतलब हरगिज कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ बदतमीजी करें और उनके साथ कोई एक्सट्रीम रवैया अख्तियार करें, लेकिन मैं आपको उस ईमान के इजहार की बात बता रही हूँ। फिर रोता नहीं है बंदा, हाय सारे गए मैं क्या करूं, हाय उनको कितना मजा आ रहा होगा। आप इस पे रोते हैं कि मेरे रिश्तेदार क्यों गलत कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदार क्यों बुरे काम कर रहे हैं, मेरे अपने गलत काम कर रहे हैं, मैं कैसे हंसूं, मैं कैसे मुबारक दूं, मैं कैसे बोलूं। मैंने देखे हम बड़े लोग भी बुद्धू बन के बैठे रहते हैं, बड़े से मेरा समझते खानदान के बड़े, नानी दादी, सास, अम्मा, फूफी, फिर उनको लेके बिठाते हैं, अम्मा जी आप अपने हाथ से ये काम सर अंजाम दें, और अम्मा जी कुछ इज्जत रखते हुए और कुछ खुश होते हुए कि चलो ये वक्त आया, अपने बच्चों के लिए गलत फैसले कर रही होती हैं उस वक्तों में। वाकई फिर बंदा अल्लाह को बन के दिखाए कि अल्लाह फिर मुझे भी किसी की परवाह नहीं है, बाढ़ में जाए अगर इनको नहीं तेरी परवाह तो मुझे इनकी परवाह नहीं। मैं कहती हूँ इतने बेपरवाह हो कि हम अगर जिए तो सही, हमारे रिश्तेदारों की भी आंखें खुल जाए, या हमने उनको खुद मौके दिए हुए, कोई मौका इसलाह करना जाने दें। आपको पता चलता है आपके खानदान में कोई काम होने लगा, लिखें, खत लिखें, मैसेज दें, फोन पे बात करें, उनसे डायरेक्ट बात करें, तस्कीर करें, कॉले बलीग करें, खामोश ना रहें। उनको वार्न करें कि ये देखिए गलत है, इसका नतीजा गलत होगा। लेकिन हम कहते हैं अब रिश्तेदारों से कौन ले, हमारी कौन सुनता, ना सुने। आपका मेरा काम सुनाना तो नहीं है, बस बोलना जी। कोई बात जो आपके जी फर आप शेयर करें।
फर्स्ट बार का यही शुरू से ही, मतलब जब से कुरान पढ़ने लगे थे एहसास हुआ था कि एक तो इस्लाम आपको अपने लिए फायदा मंद बनाता है, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी फायदा मंद बना।
सही, अब हम सोचें ना कि हम दूसरों को क्या फायदा दे रहे हैं। कभी भी गलत चीज़ पे तामुन दूसरों को फायदा नहीं देगा। जी इधर से इनको दें, पीछे से सब आप शेयर करें। वालेकुम अस्सलाम।
आज का लेसन मुझे बहुत इस तरह लगा कि ना मुझे घर जाके बहुत कुछ करना है, और मैं जिस तरह सुनती गई हूँ मैं अपना स्टैंड भी ले सकी, और मुझे लगता है कि इसी तरह मैं भी पीसती रही हूँ। और मुझे लगता है कि हम अपने साथ ही एक किस्म का हक नहीं करते जब हम दूसरों की बातों में आके दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं।
और दूसरे कभी खुश नहीं होते आपसे,
वो
कभी खुश नहीं होंगे। ये भी अल्लाह का एहसान है। मैं आपको बड़े शोर से बताने लगी हूँ कि हम जब अल्लाह को नाराज करके दूसरों को खुश करते हैं ना, तो ये अल्लाह का एहसान है कि लोग फिर भी नहीं खुश होते। क्योंकि अगर वो खुश होने लगे तो हमें भूल ही जाए कि अल्लाह को नाराज किया। बात करें जी आप रबिया जी।
मैं ये सोच रही हूँ कि सिर्फ अल्लाह पे यकीन की कमी है जिसकी वजह से हम जानते हुए भी सब कुछ कि ये हक है और ये हक नहीं है, हम उस पर पूरी तरह से पाबंद नहीं हो पाते। कभी किसी की बात में आ जाते हैं, कभी किसी को खुश करने लग जाते हैं, तो दरअसल पीछे सारी बात अल्लाह पे यकीन की मुझे लगती है। जी मैं जब ये सुन रही थी तो ये वाकई इससे पहले भी, आज से पहले भी जब भी ये जब से कुरान से जुड़े हैं तो इस तरह का एक तस्वीर बनती है जहन में, या इस तरह की ड्रीम आती है कि इस तरह का हो, ये सारी चीज़ें हों इस्लाम की तो कितना वाकई हो। और इसके बारे में मैं ये खुद भी कहती हूँ क्योंकि जो घर में जिस घर में मियाँ बीवी और बच्चे एक ही जगह पे यानी कि एक जैसे होते हैं, एक जैसे जहन के होते हैं और यानी कि दीन पे होते हैं, तो वो घर वाकई जन्नत होंगे। तो मज़ा लेने को दिल करता है कि अल्लाह करे हमारे घर भी ऐसे ही हों। तो इसमें जब ये बात हो रही थी कि एक सारा कुछ ऐसे निज़ाम कायम किया जा सकता है, ये हो सकता है, और जो एंड पे मिसाल दी गई है कि हम घर को ही अपनी एक मुमलकत समझें और वहाँ से शुरू करें, तो ये थोड़ी और आसान बात हो गई है कि हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं।
देखिए मैं आपकी बात थोड़ी सी बढ़ाऊं कि आपने कहा कि आपका भी दिल करता है कि ऐसे ही हमारे घर होते या हों। बास लोगों को माहौल बना हुआ मिल जाता है, बास को बनाना पड़ता है। जिनको बनाना पड़ता है ना उनका असर ज्यादा है, ये भी याद रखें। अल्लाह ताला ने आपको उस नेकी का मौका दिया है जो दूसरों को नहीं दिया, तो इस पे आप हमेशा अपनी नज़र अपने बच्चों पे रखें। जो काम कर सकते हैं ना वो करें, जो नहीं कर सकते उस पे अपने दिल को ना रखें।
ये हमारा फर्ज बनता है कि हम घर में अपने आसपास लोगों को जरूर बताएं, अगर नहीं बताएंगे तो हम मुजरम होंगे क्या हम कहेंगे?
नहीं अब बताना नहीं है, अब करके दिखाना है।
बिल्कुल अमल से
अब करके दिखाएं, खानदान को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, बच्चों को करके दिखाएं।
एक बात है कि मुझे किसी ने पूछा कि मतलब भाभी जान ये जो खिदमत करनी है माँ की, ये मेरे जिम्मे से नहीं, ये तो मेरे खालिद के जिम्मे है। तो मैंने कहा अल्लाह का क्या हुक्म है बेटा खिदमत करे, तो मैं अल्लाह तो कहता है मसाए का ख्याल रखे, तो कहता कहते हाँ ये भी सुना। तो मैं मसाए से पहले तो अपने घर का ख्याल रखना।
पहली बात है आपसे क्यों पूछा उन्होंने, उनको और कोई नहीं मिला।
उनको पता था कि ये आपको जाती है उधर लड़का, तो आपको इल्म होगा ना कि ये ठीक है मर्द के जिम्मे है खिदमत करना, लेकिन मर्द तो बीवी से करवाएगा ना।
उन्हें कहे कि दीन सिर्फ इस सवाल से नहीं शुरू होता कि सास की खिदमत करनी है चाहिए नहीं, उन्हें कि पहले बाकी चीजें भी सीखे। ये जवाब खुद ही मिल जाएगा आपको।
चीजें तो सभी अपने आप में कभी महसूस होती है कि स्टैंड लेना मुश्किल होता है, सारे माशरे से लड़ना जो रहना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है।
सही बात, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमारे नबी की तो सुन्नत ही ये थी, आपने स्टैंड ही तो लिया सारी जिंदगी। जी आप इधर से खालदा बाजी।
जी उस्ताद जी अब मैं घर में काम करते हैं तो तकरीबन कोशिश करते हैं कि सब कुछ मैं शुरू करूँगी आप दोनों का मकसद।
जी बिल्कुल सच है, जितना अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे अल्लाह के, मैं तो कहती हूँ अल्लाह तू अपने काम दे और मेरे ले, मैं तेरे करूं तू मेरे कर, और जो आप के अल्लाह कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। हमारे छोटे छोटे हाथ क्या काम करेंगे? बच्चा आपका कि मैं अपनी प्लेट दूंगा, मैं अपना मुंह दूंगा, आप बताएं वो कैसा करेगा? तो जब आप अपना हाथ लगाती हैं तो उसका काम अच्छा होता है ना। तो अल्लाह जब आपके काम करता है आप तो हैरान होते हैं, आपकी तो अक्ल गुम हो जाती है, लोगों को समझ ही नहीं आता आपके साथ हुआ क्या। लोग कहते हैं ये मौजज़ा हो गया, मौजज़ा नहीं होता, ये अल्लाह का वादा है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू। हम सच्चे दिल से अल्लाह के बन के देखें, अपनी जिंदगी में आपको तेल निकलते दिखेंगे। आप इस 5 से 6 फुट के जिस्म पे शरीयत नाफिज तो करके देखें पूरी, यकीन करें अल्लाह आपके लिए वो रास्ते खोलेगा जो आपने कभी आपके आपके बड़ों ने भी नहीं तसव्वुर में देखे होते। वालेकुम
जी। मैम तो अपने आपसे अल्लाह से वादा किया कि कभी भी उसकी मर्जी के खिलाफ कोई मतलब शादियां हो मरने हो तो मैंने नहीं किसी की मान ली, मैंने अपने रब को राजी करना है और किसी की नहीं मानी उसके खिलाफ। और दूसरा मैम कल अपने शोर से बात कर रही थी कि अब रमजान आ रहा है तो कभी ये खबरों का बहुत शौक है सारा दिन और टीवी पे, मैं कह रही थी कि भाई अब रमजान में जाना पूरा तकवा के साथ जाना हमने जिंदगी गुजारनी है, ये रमजान और अब टीवी पे जाना सारा दिन नहीं आप खबरें सुने के इंशाल्लाह, आप प्लीज मेरा साथ दें तो थोड़ी सी खबर सुन ली फिर उसके बाद आपने बंद कर दो। ये नाच की फुदकती हुई जाना वो तस्वीर है, ये नहीं नाच गाना जाना ये चलेगा मुझे नहीं।
खबरें सुननी हो तो 5 मिनट में सुनी जा सकती हैं, ये देखनी तो पड़ती है ना, खबरें सुने देखे नहीं।
बिल्कुल
आप तो दिखाते हैं ना खबरें।
उस्ताद जी ये वाकई जो दिल जो है ना बहुत ज्यादा कुड़ता है वो मैं हम बैठ जाते हैं कंपनी के लिए लेकिन दिल नहीं करता कि वाकई ये बंदा जो है ना बैठ के ये जाना साथ में फिर अपनी तस्वीर वगैरह जाना जिक्र वगैरह करते रहते हैं तो उस तरफ
आप जिक्र करते रहे दूसरे गुनाह करते रहे
तो साज ये सही बात है, बहुत ही अंदर से ना दिल कुटता रहता है कि कभी काश हमारे घर दिए ना पूरा पूरा जाना वो दीन का गवारा बन जाए जाना। तो अल्लाह करे हमारी कोशिश है अल्लाह सुब्हान तआला जाना देख रहे और हम इस पे जाना अल्लाह हमारा साथ दे, हमारी इतनी जबान में हमारा असर भी पैदा कर दे ताकि हम समझा सकें अपने घर वालों को।
आमीन सुब आमीन जी। और कोई कुछ कहना चाहता है?
ये बात बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में हमेशा खला महसूस करते हैं तो मैं खुद भी देखती हूँ कि इनारों में रहते हुए इतनी हमारे पास मेहनतें हैं, खाना पीना घर हर चीज़, एक ना जो होता है ना कि इंसान अंदर से खुश हो, इंसान का जहन ऐसे इंसान की रूह खुश हो वो कम महसूस होती है कि हम खुश नहीं होते, कुछ भी मिल जाए हम खुश नहीं होते। तो आज समझ आइए कि हम जब तक शरीर से अमल नहीं करेंगे
सच्ची खुशी शरीयत को कायम करने में, ये अपने लिए कोड वर्ड बना के उठे। मैं खुश रहना चाहती हूँ, मुझे अल्लाह के दीन को कायम करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी में बरकत हो। देखिए नेमते हैं, लोगों के 6 बेटे हैं और 8-8 आंसू रोते हैं, 10-10 गाड़ियां दरवाजे पे खड़ी हैं, तो आप देखें उनकी मजबूरियां कितनी। कभी दुनिया की नेमते आपको खुशी नहीं देंगी, ये तस्कीन हो जाती है वक्ती तौर पे। इतने पैसे आ गए हैं, अब इतनी गाड़ी, मिसाल है आपके 10 गाड़ियां भी आ जाए तो सर में दर्द शुरू हो जाए तो आपको 10 गाड़ियां अच्छी लगेंगी? सच्ची खुशी वो खुशियां देने वाले के हाथ में, बस उसके आगे झुकना है, अपने आप को लेकर चलना है।
जी तो भी के जब भी हम देखते हैं कि किसी बड़े के घर में खुशी और वहाँ नाफरमानी के काम हो रहे हैं लेकिन हम इस वजह से चले जाते हैं कि यहाँ तो मेरे बहुत काम अटके हुए हैं, अगर मैं इधर ना गई तो मेरा ये भी काम है वो भी काम है।
सच बताएं कि लोगों से आपके ज्यादा काम अटके हुए हैं कि अल्लाह से?
लेकिन हम सोच यही है लेकिन अल्लाह ताला ने सभी काम करने होते हैं लेकिन अभी तक यही सोच थी कि अगर मैं ना शामिल हुई तो मैं तो लेकिन मेरे
आज के बाद ये सोच भी ना रखें। देखिए ये भी शिर्क है, हमारे काम अटके हुए ना, बच्चे हैं उनके ससुराल हैं, बच्चियों के ससुराल हैं, यही कुछ है ना हमारे पाँव की बंदिश है, उनसे ज्यादा काम है कि अल्लाह से? वो तो अल्लाह है जो देता ही जाता है। एक दफा सांस रुके ना पता चले वो गई थी ना बेटी की सास को खुश करने तो मैंने सांस रोक लिया, जाओ उससे ले लो। मैं आपको सिर्फ मिसाल देना चाह रही हूँ, अल्लाह ऐसा करता नहीं, ये अल्लाह का ज़र्फ है जो मैं और आप जी रहे हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ वाकई अल्लाह की आला ज़र्फ ही है कि हम इतनी नाफरमानियों के बावजूद जी रहे हैं। यहाँ से हमने 4 मील जाना हो ना बाहर तो हम नाफरमानी नहीं करते, लाइसेंस पास कोई ना, हम गाड़ी नहीं चलाते, क्या फर्क पड़ता है यहाँ से बाहर वो जाना है ना मोड़ तक, ना सीट बेल्ट बांधो, नहीं करते, इतनी भी नाफरमानी नहीं करते, तो अल्लाह की कितनी करते हैं, और फिर हमें एहसास ही नहीं, हम कहते हैं ये तो करनी मजबूरी है। जी शेयर करें।
जी उस्ताद जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस चीज़ को आजमा भी ली है अल्हम्दुलिल्लाह, जब से कुरान के साथ तल्लुक जुड़ा है। कोशिश तो यही है कि अपनी तरफ से तो जेहन में यही आता है कि जी मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, लेकिन जो असल आज भी पता चली है और इस चीज़ की अब कुरान के साथ जुड़ने के बाद समझ आई है कि ये जो हमने एक टांग इधर रखी हुई है, एक टांग उधर रखी हुई है, उसके साथ जो है ना हमारा अपना नुकसान ज्यादा हो रहा है। हम मेहनत भी कर रहे हैं तो उसका हमारी मेहनत ज़ाया, मुझे लगता है कि मेरी मेहनत ज़्यादातर ज़ाया हो रही है क्योंकि उसका मुझे इतना फ़ायदा नहीं हो रहा जितना होना चाहिए था। तो आज फिर नए सिरे से नियत भी की है और कोशिश भी है कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमारी मदद करे और हमें इस्तकामत पे रखे। तो ये जो कल भी इस्तकामत का भी सबक पढ़ा था तो उसमें यही था कि इस्तकामत ही असल है, तो ये कि थोड़ा कर लें लेकिन वो पक्का हो और हमेशा हो,
नहीं ज्यादा करें और पक्का करें,
पक्का करें, कोशिश
थोड़े पे तो हम पहले ही बड़े खुश हैं।
जी थोड़े पे मुतमईन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि अंदर गिल्ट आता है, कोशिश होती है और ये अल्लाह का रहम ही है जो कि हम यहाँ पे चल फिर रहे हैं, नहीं तो अगर वो पकड़ने पे आए तो दूसरी सांस की भी हमें मौलत ना।
सही बात है, चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल इसका अगला हिस्सा करेंगे, अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।